5 नवंबर दिन सोमवार दिन भर मैं हूं रेहान फजल। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा अमरीकी प्रतिबंध के बावजूद तेल बेचना जारी रखेगा ईरान।
इनके जमहूरी इस्लामी ईरान امروز میتونه نفت خودش رو بفروشه و خواهد
دیکھیں گے کس طرح ایودھیا میں ہو رہی ہے بھویہ دیپوتسو کی تیاری
30,000 دیوں کو یہاں پر سسجت کرنا تھا ہم نے 32,520 دیے اس گھاٹ پر سسجت کر دیے ہیں کل جو ٹارگٹ ہم لوگوں کا 3,00,000 سے زیادہ دیے جلانے کا وشو ریکارڈ بنانے کا اس کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں
سنیے گا اپنے پتروں کے اتر بھی لیکن پہلے وشو سماچار
बीबीसी समाचार सारिका सिंह से। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि अमरीकी प्रतिबंध फिर से लागू होने के बाद उनका देश आर्थिक युद्ध की स्थिति का सामना कर रहा है। रूहानी ने कहा कि ईरान पूरे गर्व के साथ अमरीकी प्रतिबंधों से बच निकलने के रास्ते खोज लेगा। ईरानी राष्ट्रपति ने अमरीकी प्रतिबंधों को अवैध, नाजायज और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ बताया है। अमरीकी राष्ट्रपति ने करीब 6 महीने पहले ईरान से परमाणु संधि तोड़ दी थी, जिसके बाद अब ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लागू हो गए हैं। अमरीका ने इसे ईरान पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध बताया है। इसराइल ने इन पाबंदियों को ईरान की गतिविधियों का करारा जवाब बताया है, जबकि यूरोपीय संघ और चीन ने प्रतिबंधों का विरोध किया है। वहीं स्विट्जरलैंड ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान से बात कर रहा है ताकि इन प्रतिबंधों का मानवता के लिहाज से जरूरी आपूर्तियों पर बुरा असर ना पड़े। तुर्की के प्रशासन ने आरोप लगाया है कि जमाल खाशोजी की हत्या के बाद सऊदी अरब ने इस्तांबुल के दूतावास पर रासायनिक विशेषज्ञ को भेजा था ताकि वहां से सबूतों को मिटाया जा सके। इधर सऊदी अरब ने जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार पैनल को बताया है कि वो पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या के मामले की जांच कर रहे हैं और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। सऊदी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बांदर अल अबान ने अपने यहां मानवाधिकार के रिकॉर्ड का बचाव करते हुए ये बात कही। खाशोजी की पिछले महीने तुर्की के एक दूतावास में हत्या कर दी गई थी। इस साल खाशोजी की हत्या और यमन में सऊदी सेना के अभियान को लेकर सऊदी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासी आलोचना हुई है। बांदर अल अबान ने कहा
وقد عبرت القيادة في المملكة عن ألمها لمقتل المواطن جمال خاشقجي
सऊदी अरब की हुकूमत पहले ही जमाल खाशोजी की मौत पर दर्द और खेद जता चुकी है। किंग पहले ही अभियोजकों को निर्धारित कानूनों के तहत जांच आगे बढ़ाने के आदेश दे चुके हैं ताकि सच लोगों के सामने लाया जा सके और सभी अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। ये थे सऊदी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बांदर अल अबान के शब्द। इंडोनेशियाई अधिकारियों ने कहा है कि बीते हफ्ते हादसे का शिकार हुए लायन एयरलाइंस के विमान में स्पीड इंडिकेटर बीती 4 उड़ानों से काम नहीं कर रहा था। बोइंग 737 मैक्स विमान बीते सोमवार को समुद्र में जा गिरा था, जिसमें 189 लोगों की मौत हो गई थी। विमान के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से कुछ नई जानकारी मिली है। खोजी टीमों और राहत टीम का कहना है कि विमान के मुख्य हिस्से को समूचा बरामद करने के आसार बहुत कम हैं, क्योंकि उसके सबसे मजबूत हिस्से भी तबाह हो गए हैं। इसके बाकी मलबे और कॉकपिट के आवाज रिकॉर्डर को खोजा जा रहा है, जिससे पायलट और सह पायलट के बीच हुई बातचीत का पता लग सकता है। मलबे के टुकड़े दिखाते हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष सुरजांतो जाहजोनो ने कहा ये विमान के टुकड़े हैं और हम देख सकते हैं कि ये बहुत छोटे हैं। इससे पता चलता है कि विमान पानी से बहुत तेज गति से टकराया था, इसलिए उसके इतने टुकड़े हो गए। ऐसे में जो ऊर्जा निकली होगी वो असाधारण रही होगी। ये थे इंडोनेशिया की राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष सुरजांतो जाहजोनो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। श्रीलंकाई संसद के स्पीकर ने कहा है कि वो महिंदा राजपक्षे की बतौर प्रधानमंत्री नियुक्ति को तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक राजपक्षे संसद में बहुमत साबित नहीं कर देते। सख्त लहजे में स्पीकर करू जयसूर्या ने कहा कि राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने असंवैधानिक रूप से रानिल विक्रमसिंघे को हटाकर राजपक्षे को प्रधानमंत्री बनाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उन ज्यादातर संसद सदस्यों से ही सहमत होना होगा जो राष्ट्रपति के फैसले को अलोकतांत्रिक और संसदीय प्रक्रिया का अनादर मानते हैं। आज राजपक्षे के हजारों समर्थक उनके नामांकन के पक्ष में कोलंबो में रैली करने वाले हैं।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने घोषणा की है कि वो अपना तेल बेचना जारी रखेगा और अमरीका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करता रहेगा। ईरानी राष्ट्रपति की ये टिप्पणी अमरीका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के आज अमल में आने के बाद ईरान के टेलीविजन पर प्रसारित हुई है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा विवरण सुना रही हैं सारिका सिंह।
साल 2015 से लागू परमाणु संधि से इसी साल मई में अमेरिका बाहर निकल गया। अब इसके 6 महीने बाद आज से ये प्रतिबंध लागू हो गए। माना जा रहा है कि इससे बाकी देशों के साथ ईरान के कारोबारी रिश्तों पर बड़ा असर पड़ेगा। पहले से ही इसका असर सोना, कीमती मेटल और ऑटोमोटिव सेक्टर पर अगस्त के महीने से दिखने लगा था। अब तेल निर्यात पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। अमरीका ने भारत समेत 8 देशों को कुछ वक्त तक ईरान से तेल आयात करने की इजाजत दे दी है, पर ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि वो तमाम प्रतिबंधों के बावजूद तेल का कारोबार जारी रखेंगे। ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर उन्होंने ये बयान देते हुए कहा,
इनके जमहूरी इस्लामी ईरान امروز میتونه نفت خودش رو بفروشه و خواهد
ईरान तेल बेचना जारी रखेगा। अगर अमेरिका इन 8 देशों को छूट न दे तो भी हम तेल का कारोबार करेंगे। इस बार हम तमाम प्रतिबंध तोड़ कर रख देंगे।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही संयुक्त राष्ट्र में दुनिया के सभी देशों को कह चुके हैं कि वो ईरान से संबंध तोड़ लें। तब उन्होंने सख्त लहजे में कहा था कि जो कंपनियां ईरान के साथ व्यापार करेंगी उन्हें इसकी सजा मिलेगी। कारोबार के मामले में अमरीकी दबदबे को देखते हुए कई कंपनियों ने पहले से ही तेल व्यापार से हाथ खींचना शुरू कर दिया था और इसकी वजह से ईरान के तेल निर्यात में पहले ही कमी आ गई है। अब उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि ईरान को उनके फैसलों की वजह से मुश्किल झेलनी पड़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा,
The Iran sanctions are very strong. They're the strongest sanctions we've ever imposed. And we'll see what happens.
ईरान पर काफी कड़े प्रतिबंध लगे हैं। ये अब तक के सबसे बड़े प्रतिबंध भी हैं। अब देखना है कि उनका क्या होता है, पर फिलहाल उनकी हालत ठीक नहीं है। जब तक मैं सरकार में नहीं था तब तक लग रहा था कि ईरान पूरे मध्य पूर्व पर कब्जा कर लेगा, पर अब मेरे आने के बाद जैसे सब कुछ बदल गया है।
फिलहाल ईरान में अमरीकी प्रतिबंधों को लेकर जबरदस्त नाराजगी दिख रही है। वहां लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए ये मांग कर रहे हैं कि अमरीका के साथ अब किसी बातचीत की पहल ना हो। साथ ही ईरान सेना ने भी अपनी ताकत दिखाने के लिए एक हवाई सैन्य प्रशिक्षण किया। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत रहे मंसूर फरहांग का कहना है कि
These sanctions economically do not really affect the political and economic.
इन प्रतिबंधों से ईरान में राजनीतिक और आर्थिक रूप से ताकतवर लोगों पर असर नहीं पड़ेगा। इससे ईरान के आम लोगों के लिए मुश्किल आएगी।
साल 2015 में जब अमेरिका में ओबामा सरकार थी तब ईरान के साथ परमाणु संधि की गई। इसके तहत ईरान को अमेरिका समेत 5 और देशों को तेल बेचने और उसके केंद्रीय बैंक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की इजाजत मिली थी, पर डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान पर संधि के बावजूद चोरी छिपे अपना परमाणु कार्यक्रम चलाने का आरोप लगाते हुए संधि तोड़ दी और प्रतिबंध लगा दिए। पिछली बार भी साल 2010 और साल 2016 में ईरान पर तेल व्यापार को लेकर प्रतिबंध लगाए गए थे। तब ईरान के निर्यात में 50% की कमी आ गई थी। अब अमेरिका इस बार के प्रतिबंध को सबसे बड़ा प्रतिबंध कह रहा है, तो इसका ईरान पर क्या असर होगा वो बाद में पता चलेगा। फिलहाल उसके लिए राहत की बात यह है कि यूरोपीय देशों ने उसके साथ कारोबार जारी रखा है और इसके लिए उन्होंने एक खास पेमेंट का तरीका निकाला है। ईरान के रिश्ते अगर चीन और रूस के साथ और मजबूत हों तो इससे ईरान का भविष्य तय होगा।
ईरान के राष्ट्रपति का कड़ा रुख।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब कुछ खबरें भारत से। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 में से 18 सीटों पर 7 दिन बाद चुनाव होने हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल कांग्रेस के अलावा क्षेत्रीय पार्टियों के उम्मीदवार दिन रात चुनाव प्रचार में जुटे। राष्ट्रीय नेताओं के दौरे भी हो रहे हैं। सबका दावा एक ही है कि इस बार उनकी सरकार बन रही है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ की माओवाद प्रभावित 18 सीटों पर 12 नवंबर को मतदान होने हैं, जबकि शेष बची हुई 72 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव प्रचार पूरे राज्य भर में परवान चढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता एक शहर से दूसरे शहर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इनमें अमित शाह भी शामिल हैं और राहुल गांधी भी। कहीं स्मृति ईरानी ने कमान संभाली है तो कहीं राज बब्बर ने। हर जगह वादे हैं और दावे हैं। सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी रायपुर के कांग्रेस भवन में ऐसा ही एक दावा कर रहे थे।
जब कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही थी, पेट्रोल और डीजल आधे दाम पे बेचते थे, तो हमारी अगर सरकार बनेगी और कच्चे तेल की कीमत यही रही तो हम पेट्रोल 35 रुपए पे, डीजल उससे कम और एलपीजी का सिलेंडर आधे पे बेचेंगे।
वहीं एक चुनावी सभा में पहुंचे छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव बेहतरी का हवाला देकर वोट की अपील करते नजर आए।
बेहतर छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए अब ये 15 साल पुराने बेला जोड़ी को रमन सिंह की सरकार के हटाइए और कांग्रेस के नए लोगों को आप जिम्मेदारी दीजिए, तभी यहाँ की बेहतरी संभव है।
लेकिन तीसरा मोर्चा बनकर उभरे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी अपनी नई पार्टी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में हैं और जोगी का दावा है कि इस बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है।
अब कांग्रेस की बात ही नहीं करना चाहिए, ना नेता है, ना नीति है, ना उनकी कोई दिशा है, और आपस के झगड़े हैं। अपने राज्य में तो कांग्रेस लुप्त प्राय हो गई है। धनबल जलबल की लड़ाई, और जनबल हमेशा जीतता है, हम जीतेंगे।
धनबल बनाम जनबल की लड़ाई का जोगी का दावा किस हद तक सफल होगा यह कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन पिछले चुनाव में 49 सीटें पाने वाली भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रमन सिंह का दावा है कि इस बार पार्टी 65 सीटें लाएगी।
ताकत के साथ खड़े हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी फिर इतिहास दोहराएगा। 65 प्लस का टारगेट हम पूरा करेंगे, कार्यकर्ताओं का उत्साह को और आगे बढ़ेगा। मैं फिर बीच में आऊंगा, राष्ट्रीय नेता आएंगे और एक वातावरण जो बना हुआ है उसको आगे बढ़ाएंगे।
मतदान के दिन जैसे जैसे पास आएंगे ऐसे दावों की संख्या और बढ़ेगी, लेकिन इन दावों की सच्चाई तो 11 दिसंबर को ही सामने आएगी जिस दिन चुनाव परिणाम घोषित होंगे। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
अयोध्या में सरयू नदी के तट पर सरकार की ओर से आयोजित भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। मुख्य कार्यक्रम 6 नवंबर यानी कल होगा, जब राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी समेत तमाम मंत्री दीपोत्सव कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की पत्नी किम जोंग सुक मुख्य अतिथि होंगी। दीपोत्सव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार के करीब आधा दर्जन विभाग लगे हुए हैं और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद और तैयारी में लगे कुछ लोगों से बात की समीर अजमत मिश्र ने।
मैं इस समय अयोध्या में सरयू नदी के तट पर, ये नया घाट है, उस जगह पे हूँ और यहाँ बड़े जोर शोर से तैयारी चल रही है कल होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की। घाट पे जो सीढ़ियाँ बनी है उस पर दिए रखे जा रहे हैं जिनको कल जलाया जाएगा। घाट के दूसरी ओर एक रंगोली कंपटीशन चल रहा है जिसमें बहुत सी टीमें हैं जो रंगोली बना रही हैं और ये प्रतियोगिता हो रही है। बहुत सारे लोग देखने के लिए भी जुटे हैं और बहुत सारे यहाँ वॉलंटियर्स हैं। लोगों से हम जानना चाहेंगे कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं किस तरीके से ये इसको एंजॉय कर रहे हैं। क्या नाम है आप?
अर्जुन सिंह, मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक हूँ। हम लोगों को जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, घाट नंबर 8 की जिम्मेदारी विशेष रूप से हम लोगों को दी गई है जो यहाँ पर
जहाँ
खड़े हैं, ये घाट नंबर 8 है। 30,000 दियों को यहाँ पर सुसज्जित करना था, हमने 32,520 दिए इस घाट पर सुसज्जित कर दिए हैं।
तो आप तो और आगे बढ़ गए, मुझे लगता है ऐसे 2,000 सब बढ़ा देंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ हम बता दें श्रोताओं को कि ये जो वॉलंटियर्स हैं ये अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद है उसके छात्र हैं, उससे संबद्ध तमाम कॉलेजेस हैं उनके छात्र हैं। आप बताएं आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे?
मैं इस घाट का हेड हूँ, घाट नंबर 8 का।
अच्छा, क्या नाम है आपका?
मोहम्मद अमान खान।
तो क्या आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से दिए रख रहे हैं?
यहाँ पे हम रो कॉलम वाइज दिए रख रहे हैं, एक लगभग एक कॉलम में लगभग 1500 दिए हैं यहाँ पे।
4 तारीख से रिहर्सल चल रहा है, हमने अपना अचीव कर लिया है जितना दिया यहाँ लगा।
जितने दिए रखने हैं अब इनको अब जलाने की तैयारी शुरू होगी। यहाँ NCC की वॉलंटियर्स हैं, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम अभिलाषा सिंह है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में, मैं फिजिकल एजुकेशन से छात्र हूँ।
आपको क्या ड्यूटी यहाँ मिली हुई है, क्या करना है?
सर, हमारी ड्यूटी है कि चेकिंग करना है और रंगोली की जो मतलब कोई जाए ना उनके पास। अच्छा। फोटो ना क्लिक करे, मतलब हम लोग की ड्यूटी हर जगह जा रही है। अच्छा। और दिए बिछाने हैं तो मतलब सही से लग रहे हैं कि नहीं, लाइन से दिए खोल दे के उनको उन तक पहुँचाना है।
ये कहा जा रहा है कि ये सब चीजें क्या राम मंदिर जो निर्माण है उसको लेकर के उसको भटकाने की कोशिश है, कुछ और है?
नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अयोध्या नगरी जिसलिए जानी जाती है उसे केवल एक रूप देने का प्रयास माननीय योगी जी के द्वारा है। जहाँ की पिछली सरकारों या पिछले समय में अयोध्या का कोई अस्तित्व नहीं था, आज विश्व पटल पर एक अयोध्या की पहचान बन रही है।
आपको लगता है कि अभी विश्व पटल में अयोध्या का नाम इतिहास में दर्ज नहीं है?
अयोध्या की पहचान पहले से ही है और इसे कोई अलग पहचान नहीं देने की जरूरत है। ये
देखिए, पहले पूर्व में भी इसको एक रिलीजियस प्लेस माना जाता था और आज भी उस रिलीजियस प्लेस को जो त्रेता युग की और द्वापर की था कि कैसे हम इनको बढ़ाएंगे, देव दीपावली को हम मनाएंगे, इसका मेन उद्देश्य हमारा ये है कि वर्ल्ड फेम पे यहाँ के टूरिस्ट आएं और अयोध्या की जो है तहजीब को देखें और हमारा इससे इनकम भी बढ़ेगा और अयोध्या की संस्कृति भी अच्छी जाएगी और लोग उससे अच्छी प्रेरणा भी लेंगे।
जाहिर सी बात है कि अभी तक अयोध्या का को लेकर के जो चर्चाएं होती थी, भगवान राम की जन्मस्थली थी ये तो ठीक है, लेकिन मंदिर मस्जिद एक विवाद की वजह से होती थी, तो आपको लगता है कि उस विवाद से लोगों का ध्यान हटेगा?
नहीं, ध्यान की बात नहीं है, ये एक चूँकि ये दीपावली के अवसर पर हम उसके एक दिन पहले यानी कल 6 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और संस्कृति और पर्यटन विभाग की तरफ से और हम सभी जनमानस की तरफ से ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि इसको एक ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
इन लोगों को ये उम्मीद है कि अगर यहाँ पे हर साल इस तरह से दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होता है, अयोध्या एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा और अंततः अयोध्या का विकास होगा। समीर आत्मज मिश्र, BBC अयोध्या।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। कभी विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे लालू यादव इन दिनों पारिवारिक कारणों से परेशान हैं। इसका असर उनकी दिनचर्या पर पड़ा है, वो समय पर भोजन नहीं कर रहे और लोगों से उनकी बातचीत भी कम हो रही है। इस कारण उनका इलाज कर रहे डॉक्टर चिंतित हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनके बेटे और बहू के बीच के झगड़े के पीछे सिर्फ पारिवारिक कारण ही नहीं है, इसके राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। सुनिए रांची से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
अब मेरा नुकसान नहीं हो रहा है क्या? हम घुट उठ के जिए, मर जाए क्या? मर जाए हम, फांसी लगा लें क्या?
राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव रांची में जिस वक्त बयान दे रहे थे, लालू यादव लगभग उसी समय रिम्स में सो रहे थे। आमतौर पर उनकी नींद सुबह खुलती है और वे समय पर नाश्ता और भोजन लेते हैं, लेकिन कल वे देर से जगे। जाहिर है लालू यादव चिंतित हैं, उन्हें अपने परिवार को एकजुट रखने की चिंता है, तो रिम्स के डॉक्टरों की चुनौती लालू यादव को स्वस्थ रखने की है। रांची में उनका इलाज कर रहे राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर DK झा ने बताया कि उन्हें समय पर खाने और सोने की सलाह दी गई है।
परसों जो है वो दिन का खाना ही नहीं खा सके, उसके बातचीत के चक्कर में 3 बजे तक उसका इंतजार करते रहे, उसके बाद वो आगे थोड़ा एक घंटा बात किए, परसों का लंच मिस किए और उनको इंसुलिन चल रहा 88 यूनिट। इतना हेवी डोज इंसुलिन पे हम लोग चाहते हैं कि आप अपना डाइट मिस ना करें। वी वर वेरी वरीड कि कहीं वो हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शाम तक भी उनका शुगर ठीक था। कल वो काफ़ी देर से उठे और वो 2 बजे नाश्ता किए और कल दिन का खाना जो 2 बजे वो अमूमन दिन का खाना खाते हैं, वो शाम के 5 बजे उन्होंने लंच लिया। आज वो नाश्ता 12:30 में लिए हैं और दिन का खाना 3 बजे खाए हैं। तो परसों तो ठीक ही थे, कल वो कम बातचीत किए, लेकिन आज सरप्राइजिंगली वो आज चेयर रिलेटिवली वो ठीक थे, स्टेबल थे।
लालू यादव की सेहत की चिंता न केवल उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों को है, बल्कि उनकी एक झलक पाने उनकी खबर जानने के लिए दिन रात रिम्स में डटे सैकड़ों कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि लालू यादव स्वस्थ रहें। इस बीच राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लालू यादव का पारिवारिक विवाद सिर्फ पारिवारिक ही नहीं है, इसके पीछे राजनीतिक कारण भी हैं। उनकी राजनीति को लंबे समय से कवर कर रहे वरिष्ठ पत्रकार मधुकर कहते हैं,
देखिए जो सारा सर्कमस्टांसेज है, उस सर्कमस्टांसेज में ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ तेज प्रताप के चलते ये सारा तलाक वगैरह का मामला हो रहा है। इसमें राजनीति की भी बू आती है कि क्यों राजनीति कर रहा है ताकि लालू प्रसाद के परिवार को तोड़ा जाए। उसमें है कि लालू प्रसाद को जेल भेज दिया गया, बाकी जो मामले हैं ये कहना होटल्स का, उस मामले में संपत्तियां जब्त हो रही हैं, 2019 का चुनाव आने वाला है, इस बीच में तेज प्रताप को जैसे अलग कर देते हैं, तेज प्रताप को लड़ा देते हैं, तो लालू प्रसाद को पराजित करना बहुत आसान हो जाएगा।
दरअसल 72 साल के लालू यादव ने अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसी परिस्थिति शायद ही देखी हो। पिछले मई में जब तेज प्रताप यादव की शादी हुई तब लालू यादव काफी खुश थे, उन्होंने इसे भव्य समारोह का रूप दिया था। अब जब तेज प्रताप यादव ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या से तलाक का आवेदन दे दिया है, लालू यादव इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। उन्हें इस वक्त अपने परिवार और पार्टी को एकजुट रखने की चिंता। गया है। संभव है आने वाले दिनों में लालू यादव पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं और आज नकल तेज प्रताप यादव को मना लें, लेकिन इस पारिवारिक विवाद ने जिस तरीके से लालू यादव को ठेस पहुंचाई है उसकी भरपाई कर पाने में उन्हें वक्त लग सकता है। रवि प्रकाश, BBC रांची।
कश्मीर में इस बार बर्फबारी से 500 करोड़ रुपए की सेब की फसल बर्बाद हो गई है। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर सेबों से भरे 5000 ट्रक फंसे हुए हैं। सेब उद्योग से जुड़े किसान और लोग बर्फबारी से हुए नुकसान से सदमे में हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने सरकार से नुकसान झेल रहे किसानों को हर्जाना देने की मांग की है। श्रीनगर से माजिद जहांगीर।
बीती शनिवार को कश्मीर घाटी में हुई बर्फबारी ने जहां एक तरफ आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया, वहीं कश्मीर के सेब के बागों को भारी नुकसान से दो चार होना पड़ा है। कश्मीर के दक्षिण के चार जिलों अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शुपया में बर्फबारी ने सेब के बागों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। बर्फबारी के कारण ज्यादातर सेब के बागों के दरख्त या तो दो फाड़ हो गए हैं या फिर सेब के दरख्तों की टहनियाँ टूट चुकी हैं। कुलगाम के एक किसान खुर्शीद अहमद।
मेरा बगीचा जो है इसमें करीबन 20 बूटे हमारे बिल्कुल खत्म हुए हैं, तो दूसरी जगह हम गए नहीं तो वहाँ ज्यादा बर्फ ऊंचाई पे, वो बगीचा ऊंचाई पे वहाँ ज्यादा ही नुकसान हुआ होगा।
जिला अनंतनाग के खिरम इलाके में सेब के कई बागों के मालिक गुलाम रसूल भट्ट कहते हैं कि उनके इलाके के 80% लोगों की रोजी रोटी सेब के कारोबार पर ही निर्भर करती है।
इस बर्फबारी ने अगर हम अपने गाँव की बात करें, अपने एरिया की बात करें, तो तकरीबन 80% बागात में नुकसान हुआ है। वो नुकसान इतना हुआ है कि कुछ बागात जो बुनियाद से ही खत्म हो गए, उनको अब नए दरख्त लगाने हैं क्योंकि पुराने दरख्त अब किसी काम के नहीं रहे।
जो हमारी इकोनॉमी है हमारे इलाके की, हमारे जिले की और खसूसन और हमारे कश्मीर की अमूमन, तो ये इसी पर निर्भर करती है, मेवाजात पर।
अभी तक सरकारी सत्ता पर सेब के बागों के नुकसान के आंकड़े सामने नहीं आए हैं। अधिकारियों का कहना है कि वो जमीनी सत्ता पर नुकसान के आंकड़े जमा करने में जुटे हुए हैं। डायरेक्टर कश्मीर हार्टिकल्चर मंजूर कादरी कहते हैं कि बर्फबारी से जो नुकसान सेब के बागों को हुआ है उसका असर अगले कई वर्षों तक देखा जा सकता है।
देखिए, जहाँ तक अगर हम नुकसान की बात करेंगे, ये साउथ कश्मीर में ज्यादा हुआ है। साउथ कश्मीर जो टिक्स है, शुपयान, कुलगाम, अनंतनाग और पुलवामा, उधर ज्यादा डैमेज हो गया है। इससे जो इसका पोटेंशियल बियरिंग कैपेसिटी आने वाले सालों में इसका जो फार्मर को जो इसका फायदा होने वाला था वो कम हो जाएगा।
उधर कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के एक बयान के मुताबिक कश्मीर में बर्फबारी से सेब की फसल और सेब के दरख्तों को करीब 500 करोड़ का नुकसान हुआ है। राज्य के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बताया है कि कश्मीर घाटी में जिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है उनको मुआवजा दिया जाएगा। वही कश्मीर के राजनीतिक दलों ने सरकार से मांग की है कि वह किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा दें। अलगावादी नेता सईद अली शाह गिलानी ने भी सेब के बागों को हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त की है। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर में नवंबर में हुई बर्फबारी करीब 9 वर्षों के बाद हुई है। कश्मीर घाटी में लोगों की एक बड़ी आबादी सेब उद्योग के साथ जुड़ी हुई है और जिनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सेब उद्योग पर ही निर्भर करती है। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
आज सोमवार है और आज के दिन आप इंतजार करते हैं अपने पत्रों का।
आपकी राय। नमस्कार, आपकी चिट्ठियों के साथ आज मैं हूं राजेश प्रियदर्शी और मेरे साथ स्टूडियो में हैं
ज्योतिका। नमस्कार।
तो चलिए ज्योतिका, शुरू करें चिट्ठियों का और ईमेल का सिलसिला।
जी बिल्कुल, और सबसे पहले मैं ये ईमेल लेना चाहूंगी डॉक्टर हेमंत कुमार का। वो लिखते हैं कि 3 अक्टूबर को bbchindi.com पर फैसल मोहम्मद अली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बयान हिंदू भावनाओं को समझ कर न्याय के क्या है मायने में दी गई जानकारी सटीक लगी। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए BBC परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका बहुत शुक्रिया। आम तौर पर भारतीय जनता पार्टी और RSS के बारे में, हमारी रिपोर्टिंग के बारे में काफ़ी लोग कई बार शिकायत भी करते हैं और कहते हैं कि वो उनको अच्छी नहीं लगी, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम पूरी निष्पक्षता, ईमानदारी और जो तथ्य हैं उनके साथ आप तक रिपोर्ट पहुंचा सकें। आपका बहुत शुक्रिया।
अगला ईमेल मैं लेना चाहूंगी मनीष कुमार भारद्वाज का। नालंदा बिहार से लिखते हैं, 2 नवंबर को दिन भर कार्यक्रम में सारिका सिंह की प्रस्तुति एकदम दमदार आवाज के साथ थी। उनकी आवाज अचला शर्मा की याद दिलवा देती है। वैसे सारिका सिंह को YouTube चैनल पर देखते रहते हैं। आपसे निवेदन है कि BBC भारत के लुप्त होते जनजाति पर कोई कार्यक्रम करें।
आपका बहुत शुक्रिया कि आपने सारिका जी का जो कार्यक्रम था उसको पसंद किया। वो जाहिर है कि हमारे टेलीविजन कार्यक्रम को प्रस्तुत करती हैं और उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। आपकी ये जो तारीफ है, ऐसी तारीफ की कई और चिट्ठियां हमें लोगों ने भेजी हैं, हम आपकी ये तारीफ सारिका जी तक पहुंचा देंगे। बहुत शुक्रिया। और जो दूसरा आपका सुझाव है, वाकई वो एक ऐसा सुझाव है जिसके बारे में जब ये चिट्ठी पढ़ रही थी ज्योतिका, तो मुझे लगा कि हाँ, हमें सोचना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा उपेक्षित हैं, जिनके बारे में कोई बात नहीं होती, कोई चर्चा नहीं होती, और लोगों को उनके बारे में जानना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा सुझाव है, इसके लिए शुक्रिया।
अगला ईमेल है पीयूष कुमार सिराजपुरी से, लिखते हैं कि पत्रकार होना कितना कठिन काम है, आज यहाँ कल वहाँ, उम्र के किसी भी पड़ाव में रिपोर्टिंग करने निकल पड़ते हैं, घर परिवार बाल बच्चों से दूर। इमरान कुरैशी व नारायण बारेट सर जैसे सीनियर लोग सप्ताह में 5 दिन अलग अलग शहर घूमते हैं, तो हमें बड़ा कष्ट महसूस होता है जब उनके बारे में सोचता हूँ, परंतु उनकी रिपोर्टिंग सुनकर बहुत ही आनंद आता है। भारत में सुनामी आने से पहले जो बरसात कार्यक्रम में टीआरपी और मीडिया के कामकाज को लेकर जो नाटक सुनाया गया था, किस तरह अपने कामकाज के माहौल और टिके रहने के जद्दोजहद से, मैं आपके काम करने की शैली को सैल्यूट करता हूँ दिल से, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।
बहुत शुक्रिया आपका पत्र लिखने के लिए, और मैं आपकी याददाश्त की दाद देता हूँ, क्योंकि इसको कई साल गुजर चुके हैं सुनामी को आए हुए, और उसके बाद जो नाटक हुआ था वो लंदन से प्रसारित हुआ था, मैं भी वहीं था, और आप उसको अभी तक आपने याद रखा है, ये बड़ी कमाल की बात है। जाहिर है कि वो अच्छा रहा होगा, याद रखने लायक रहा होगा, इसलिए आपने याद किया, लेकिन फिर भी आपकी याददाश्त की मैं दाद देता हूँ।
अगली एक छोटी सी कंप्लेंट है, संजीव कुमार लिखते हैं बिहार से, सर मैंने पहले भी मेल किए थे पर मेरा मेल पढ़ा नहीं जाता, रसदुल्ला खान की डायरी पढ़कर ताजगी आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है।
तो सबसे पहले तो ये कि आपकी शिकायत दूर हो गई है, आपका पत्र पढ़ा गया, तो मैं आपसे और उन सभी श्रोताओं से ये अनुरोध करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि दिल छोटा ना करें, आप हमें चिट्ठियाँ लिखते रहें, हमारे पास बहुत सारी चिट्ठियाँ आती हैं डाक से भी और ईमेल से भी, और पत्रों के इस कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चिट्ठियों को शामिल कर सकें, लेकिन जाहिर है कि समय की सीमा है, तो हर बार और कई बार नहीं हो पाता, लेकिन आप यकीन मानिए कि आप जो भी चिट्ठियाँ हमें लिखते हैं हम उन्हें पढ़ते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है आपके पत्र पाकर, लेकिन कार्यक्रम में हम सबको शामिल नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है।
और अगला ईमेल है सिद्दीक अहमद का, 10वीं कक्षा के छात्र हैं, लिखते हैं कि मैं मोहब्बतपुर ढाका बिहार से हूं और मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं, बीबीसी ज्यादातर सुनता हूं और बीबीसी अंतर्राष्ट्रीय समाचार सबसे ज्यादा पसंद है मुझे, भले ही वसुतल्ला खान की डायरी पूरी तरह से समझ नहीं आती हो।
हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे इतने युवा श्रोता हमें ईमेल लिख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और अभी से आपको अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और समाचार अच्छे लग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सामान्य ज्ञान में और दुनिया जहान में क्या हो रहा है उसमें आपकी दिलचस्पी है। जयंत कुमार दास ने लिखा है बेलवा कटिहार से, ये लिखते हैं कि 20 अक्टूबर को दिन भर में रेहान फजल ने जो विवेचना प्रस्तुत की उसमें पाकिस्तानी फौजी राष्ट्रपति जनरल याहिया खान पर किया गया कार्यक्रम सुना, जो बेहद रोचक और जानकारी भरा था। इन्होंने कार्यक्रम की तारीफ की है और इन्होंने साथ में ये अनुरोध भी किया है कि मल्लिकाए तरन्नुम नूरजहां पर विवेचना प्रसारित की जाए। आपकी ये तारीफ और आपका ये सुझाव हम दोनों पहुंचा देंगे रेहान फजल तक, और अब घड़ी इशारा कर रही है कि हमें चलना चाहिए, तो आप इसी तरह हमें अपनी चिट्ठियां और ईमेल लिखते रहें। चिट्ठी लिखने के लिए हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003, और अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहें तो हमारा पता वही है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि अमरीकी प्रतिबंध फिर से लागू होने के बाद उनका देश आर्थिक युद्ध की स्थिति का सामना कर रहा है। तुर्की के प्रशासन ने आरोप लगाया है कि जमाल खाशोजी की हत्या के बाद सऊदी अरब ने इस्तांबुल के दूतावास पर रासायनिक विशेषज्ञ को भेजा था ताकि वहां से सबूतों को मिटाया जा सके। इंडोनेशियाई अधिकारियों ने कहा है कि बीते हफ्ते हादसे का शिकार हुए लायन एयरलाइंस के विमान में स्पीड इंडिकेटर बीती 4 उड़ानों से काम नहीं कर रहा था। और श्रीलंकाई संसद के स्पीकर ने कहा है कि वो महिंदा राजपक्षे की बतौर प्रधानमंत्री नियुक्ति को तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक राजपक्षे संसद में बहुमत साबित नहीं कर देते। म्यांमार में हुए उपचुनाव में आंग सान सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को झटका लगा है और वो 13 में से सिर्फ 7 सीटें ही जीत सकी हैं। चीन ने अपने पहले पानी में तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण शुरू कर दिया है। यंताई शहर में बन रहे इस संयंत्र को बनाने में $2 बिलियन का खर्च आएगा।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे रविशंकर कुमार। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।